بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 8 ہے. آج ہم آپ کے لیے عمران سیریز کا ناول بلیک جیک ریکارڈ کر رہے ہیں. اس ناول کے مصنف ظہیر احمد ہیں. یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں: 0321-2138-225, 0300-2919-600 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org www.qurtaba.org. اب سنتے ہیں پارٹ نمبر 8. ہاں کلاس کا، اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ریڈ نوٹ بک خود ہی مجھے دے دو. جب تک تم میری غلامی میں رہو گی اور میرے حکم کی تعمیل کرتی رہو گی، میں سی آر آن نہیں کروں گا. لیکن جیسے ہی تم نے میرے کسی حکم کی نافرمانی کی یا میرے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو اس کا انجام بھیانک ہوگا، بے حد بھیانک، بلیک جیک نے کہا. کلاسٹر کے چہرے پر پسینے کے قطرات ابھر آئے تھے اور وہ دہشت بھری نظروں سے بلیک جیک کو دیکھ رہی تھی. اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ وہ بلیک جیک کے ٹکڑے اڑا دے. اسی لمحے بلیک جیک نے ریموٹ کنٹرول کا ایک بٹن پریس کیا تو اچانک کلاسٹر کو ایک زوردار جھٹکا لگا. اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی. وہ یک لخت فرش پر گری اور اس بری طرح سے تڑپنے لگی جیسے اس کے جسم میں ہزاروں وولٹ کا کرنٹ دوڑ گیا ہو. شاید تمہیں اس بات پر یقین نہیں تھا کلاسٹا کہ میں نے تمہارے جسم میں سی آر انجیکٹ کر رکھا ہے، اس لیے میں نے تمہیں بالکل معمولی سا شوق دیا ہے تاکہ تمہیں میری بات پر یقین آ جائے، بلیک جیک نے مسکراتے ہوئے کہا. کلاسٹا کراہتے ہوئے اٹھی. اس کا رنگ سرسوں کے پھول کی طرح زرد ہو رہا تھا اور اب واقعی اس کے چہرے پر بے پناہ خوف و ہراس ابھر آیا تھا. تم مکار اور دھوکے باز ہو بلیک جیک، تم نے میرے جسم میں سی آر انجیکٹ کر کے اچھا نہیں کیا. ایسا کر کے تم نے اپنی موت میرے ہاتھوں بے حد بھیانک بنا ڈالی ہے. جلد یا بدیر میں تم سے انتقام دوں گی، ایسا انتقام جس سے تمہاری نسل تک کانپ اٹھیں گی، کلاسٹا نے کہا. ایسا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال ریڈ نوٹ بک مجھے دے دو، بلیک جیک نے منہ بنا کر کہا. کلاسٹا چند لمحے غور سے اس کی جانب دیکھتی رہی، پھر اس نے سر جھٹکا اور ریڈ نوٹ بک لے کر بلیک جیک کی طرف آ گئی. اس نے ریڈ نوٹ بک بلیک جیک کی طرف بڑھائی. اس سے پہلے کہ بلیک جیک اس سے نوٹ بک پکڑتا، اچانک ایک فائر ہوا اور کلاسٹا کے ہاتھ سے ریڈ نوٹ بک نکل کر دور جا گری. فائر کی آواز سن کر وہ دونوں بجلی کسی تیزی سے پلٹے اور پھر دروازے پر نظر پڑتے ہی ان کی نظریں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں. عمران صاحب، ابھی ابھی کرنل طارق کی کال آئی تھی. اس نے اولڈ فورٹ کے ایس ایس آر سے تمام قیمتی سامان نکال کر بھجوا دیا ہے، لیکن اس نے کہا ہے کہ ریڈ نوٹ بک جس میں ڈاکٹر ثاقب کا آئی بی فارمولا درج تھا وہاں سے دستیاب نہیں ہو سکی. اس نے ایس ایس آر کے تمام لاکروں کو مکمل طور پر چیک کر لیا ہے. عمران کو آپریشن روم میں داخل ہوتے دیکھ کر بلیک زیرو نے اس کے احترام میں اٹھتے ہوئے کہا. ریڈ نوٹ بک کرنل اسلم کے پاس تھی. میں نے تمہارے سامنے ہی تو کرنل اسلم کو کہا تھا کہ وہ لاکر سے ریڈ نوٹ بک نکال کر اپنے پاس رکھ لے اور اس کی جگہ نقلی ریڈ نوٹ بک لا کر اس لاکر میں رکھ دے، عمران نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا. میں نے یہ بات کرنل طارق کو بتائی تھی. اس نے کرنل اسلم کے لباس کی تلاشی بھی لی تھی لیکن مگر اس سے کچھ برآمد نہیں ہوا. البتہ کرنل طارق نے ایک اور حیرت انگیز رپورٹ بھی دی ہے، بلیک زیرو نے کہا. وہ کیا؟ عمران نے کہا. کرنل طارق نے ایس ایس آر سے تمام سامان نکال کر اسپیشل لوڈروں میں ڈال کر جیسے ہی وہاں سے ان لوڈرز کو روانہ کیا تھا، اسی وقت وہاں ایک ہیلی کاپٹر آ گیا تھا. اس ہیلی کاپٹر میں دو افراد سوار تھے جنہوں نے اولڈ فورٹ اور اس کے گرد و نواح میں دھوئے کے بم پھینکنے شروع کر دیے تھے. ان دھوئوں کے بموں کی وجہ سے کرنل طارق اور اس کے ساتھی بے ہوش ہو گئے. کرنل طارق نے نیم بے ہوشی کے عالم میں اس ہیلی کاپٹر کو سڑک پر اترتے دیکھا اور پھر اس ہیلی کاپٹر سے ایک شخص نکل کر سیدھا اولڈ فورٹ میں گھس گیا. وہ اولڈ فورٹ کے اس حصے میں گیا تھا جہاں کرنل اسلم اور اولڈ فورٹ کے محافظوں کی لاشیں موجود تھیں. پھر وہ چند لمحوں میں واپس آ گیا تھا اور واپس ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑ گیا تھا. اس کے بعد کرنل طارق بے ہوش ہو گیا تھا. جب اسے ہوش آیا تو وہاں اس کی فورس کے تمام افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے جنہیں ہوش میں لانے میں خاصا وقت لگا تھا، اور بلیک زیرو نے کہا. اور اس کا حلیہ کیا تھا؟ عمران نے پریشانی کے عالم میں پوچھا تو بلیک زیرو نے اسے حلیہ بتا دیا جو اسے کرنل طارق نے بتایا تھا. ओह, ये तो मास्टर जोसो का हुलिया है। इसे नकली नोटबुक देखकर अंदाजा हो गया होगा कि मैंने उसके साथ क्या चाल चली है। वो दोबारा ओल्ड फोर्ट में आया होगा। शायद उसे शक हो गया कि रेड नोटबुक अभी ओल्ड फोर्ट में ही मौजूद है। उसका सीधा लाशों की तरफ जाना इस बात का सबूत है, जैसे उसे यकीन हो कि असली रेड नोटबुक कर्नल असलम के लिबास में ही मौजूद है, इसलिए वो सीधा वहीं गया था और उसने कर्नल असलम के लिबास से रेड नोटबुक हासिल की और निकल गया। वेरी बैड, असली रेड नोटबुक मास्टर जोजो ले गया है। ये वाकई बुरा हुआ है, इमरान ने तशवीश भरे लहजे में कहा। लेकिन इमरान साहब, मास्टर जोजो को कैसे मालूम हो सकता है कि असली रेड नोटबुक कर्नल असलम के लिबास में है, ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। वो इंतहाई जहीन और खतरनाक हद तक चालाक इंसान है ब्लैक जीरो। उसने भी ब्लैक जैक की तरह साइंस में बेपनाह तरक्की कर रखी है। जब क्लास्टा और उसने ओल्ड फोर्ट पर रेड किया था तो मास्टर जोजो ने यकीनन वहां कोई साइंसी आला छुपा दिया होगा ताकि वो ओल्ड फोर्ट में किसी दूसरी इजाद या फार्मूले के हुसूल के लिए काम करना चाहे तो उसे कोई मुश्किल पेश न आए। जब नकली रेड नोटबुक का इस पर इंकशाफ हुआ होगा तो उसने यकीनन इसी साइंसी आले से दोबारा रेड नोटबुक को तलाश करने की कोशिश की होगी और शायद इसी साइंसी आले की वजह से उन्हें कर्नल असलम की लाश के लिबास में असली रेड नोटबुक नजर आ गई होगी। इसलिए वो हेलीकॉप्टर में अपने साथी के साथ वहां पहुंचा होगा और उसने वहां खून खराबा करने के बजाय धुएं के बम फेंक कर वहां मौजूद तमाम फौजियों को बेहोश कर दिया। फिर मास्टर जोजो हेलीकॉप्टर से उतरकर ओल्ड फोर्ट में गया होगा। उसे चूंकि मालूम हो गया होगा कि रेड नोटबुक कर्नल असलम की लाश के लिबास में है, इसलिए वक्त जाया किए बगैर इधर उधर जाने के बजाय वो सीधा कर्नल असलम की लाश के पास गया होगा और उसके लिबास से रेड नोटबुक निकाल ली होगी। जो सूरत हाल तुम्हें कर्नल तारिक ने बताई है उससे तो इन वाकयात का यही तज्जिया बनता है, इमरान ने कहा। कर्नल तारिक ने इस हेलीकॉप्टर के बारे में तफसीलन बता दिया था। वो ट्विस्टर हेलीकॉप्टर था। ऐसे हेलीकॉप्टर अमूमन फजाई सर्वे के काम में आते हैं। वो हेलीकॉप्टर सुपर क्लब के मालिक मास्टर जोजो ही का था और उसमें से जो शख्स निकल कर ओल्ड फोर्ट में गया था उसका जो हुलिया कर्नल तारिक ने बताया था वो मास्टर जोजो का ही था, ब्लैक जीरो ने कहा। तुमने स्पेशल कंट्रोल टावर से इस हेलीकॉप्टर की लोकेशन वगैरह चेक करवाई है, इमरान ने पूछा। जी हाँ, वो हेलीकॉप्टर शुमाल में 10 किलोमीटर दूर मजाफाती इलाके की तरफ जाता देखा गया था। चेकिंग के मुताबिक वो हेलीकॉप्टर एक नई तामीर शुदा कॉलोनी TS की एक बड़ी इमारत में उतरा था और फिर फौरन ही वहां से निकल गया था। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर मगरबी किनारे पर मौजूद एक पहाड़ी इलाके की तरफ जाता चेक किया गया था। इसके बाद हेलीकॉप्टर गायब हो गया था। शायद इन लोगों ने इस हेलीकॉप्टर को किसी पहाड़ी इलाके में छुपा दिया था, ब्लैक जीरो ने कहा। जिस इमारत में हेलीकॉप्टर उतरा था उसकी पोजीशन क्या है, इमरान ने पूछा। कंट्रोल टावर से इस इमारत की जो लोकेशन बताई गई थी उसे मैंने नोट करके मास्टर कंप्यूटर में ग्राफ कर दिया है, आप खुद देख लें, ब्लैक जीरो ने कहा और उसने उठकर दाएं तरफ पड़ी हुई एक बड़ी सी मशीन को ऑन किया। इस मशीन पर एक स्क्रीन भी नस्त थी। ब्लैक जीरो ने मशीन को ऑपरेट करना शुरू किया तो स्क्रीन रोशन हो गई और इस पर आड़ी तिरछी लकीरों का जाल सा बनता चला गया। ब्लैक जीरो जो जो मशीन ऑपरेट करता जा रहा था लकीरें फैल और सिमट रही थीं। फिर इन लकीरों का एक नक्शा सा बन गया जिस पर इमारतों और सड़कों को वाजे करके इन पर नंबर और नाम लिखे हुए नजर आ रहे थे। ब्लैक जीरो ने मशीन के चंद बटन दबाए तो मेन रोड पर मौजूद एक बड़ी सी इमारत के गिर्द सुर्ख दायरा सा बन गया और फिर वो दायरा इस इमारत के गिर्द स्पार्क करने लगा। ये है वो इमारत जहां हेलीकॉप्टर उतरा था, ब्लैक जीरो ने रेड सर्किल पर उंगली रखते हुए कहा। गुड, इसका मतलब है ब्लैक जैक और क्लास्टा इस इमारत में मास्टर जोजो से रेड नोटबुक हासिल करने जरूर आएंगे, इमरान ने कहा और फिर जल्दी से उठकर एक और मशीन के पास आ गया। इस मशीन के सामने बैठकर इमरान ने मशीन पर चढ़ा गलाफ उतार दिया। मशीन पर एक काफी बड़ी स्क्रीन नस्त थी। इमरान ने इसी मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। काफी देर तक वो इस मशीन को ऑपरेट करता रहा और फिर इसने मशीन का एक बटन प्रेस किया तो स्क्रीन पर झमाका सा हुआ और फिर अचानक स्क्रीन पर एक नौजवान दिखाई देने लगा जो एक कमरे में जो कि स्टोर रूम तर्ज का था दाखिल हो रहा था। ये कौन है, ब्लैक जीरो ने पूछा। ब्लैक जैक, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, मगर ब्लैक जैक PTS मशीन पर कैसे नजर आ रहा है, क्या आपने उसके लिबास में माइक्रो TS पिन लगा रखी है, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ब्लैक जैक जब फ्लैट में मेरा शिकार खेलने आया था तब मैंने दो नाली बंदूक से उस पर माइक्रो PTS पिन फायर कर दी थी जिसका ब्लैक जैक को इल्म नहीं हुआ था, इमरान ने कहा। उसके हाथ मुसलसल कंप्यूटराइज्ड मशीन की कीबोर्ड पर चल रहे थे और फिर इमरान ने एक बटन दबाया तो अचानक स्क्रीन पर मौजूद ब्लैक जैक को एक हल्का सा झटका लगा। लो, पीटीएस माइक्रोपिन उसके जिस्म में घुस गई है, अब ये वही करेगा जिसका मैं इसे हुक्म दूंगा, इमरान ने कहा और उसने मशीन का एक और बटन दबा दिया तो स्क्रीन पर एक लख्त ब्लैक जैक का चेहरा क्लोजअप में आ गया। ब्लैक जैक की आंखों में जैसे जिंदगी की रमक खत्म हो गई थी। इमरान ने स्क्रीन पर ब्लैक जैक का चेहरा और ज्यादा क्लोज किया। अब स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक जैक का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। इमरान ने मशीन के साथ लगा हुआ एक माइक पकड़ कर खींचा और उसे मुंह के करीब कर लिया। ब्लैक जैक, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? इमरान ने माइक का एक बटन प्रेस करते हुए कहा तो स्क्रीन पर ब्लैक जैक ने इस बात में सर हिला दिया। गुड, क्या तुम इस वक्त अपने हेडक्वार्टर में मौजूद हो? इमरान ने पूछा तो ब्लैक जैक ने एक बार फिर सर हिला दिया। क्या ये वही हेडक्वार्टर है जहां तुम गायब होकर शीशे के सुतून में पहुंचे हो? इमरान ने कहा तो जवाब में ब्लैक जैक ने फिर इस बात में सर हिला दिया। क्या क्लास्टा तुम्हारे साथ है? इमरान ने पूछा। इस बार भी ब्लैक जैक ने इस बात में सर हिलाकर ही जवाब दिया था। और मास्टर जोजो, क्या वो भी तुम्हारे हेडक्वार्टर में है? इमरान ने कहा। इस मरतबा ब्लैक जैक ने इनकार में सर हिलाया था। क्या तुम्हें मालूम है कि मास्टर जोजो SSR से असली रेड नोटबुक ले उड़ा है? इमरान ने पूछा तो ब्लैक जैक ने इस बात में सर हिला दिया। क्या मास्टर जोजो ने रेड नोटबुक तुम्हारे या क्लास्टा के जरिए हासिल की है? इमरान ने पूछा तो ब्लैक जैक ने इनकार में सर हिला दिया। इसका मतलब है कि मास्टर जोजो ने रेड नोटबुक अपने मफाद के लिए हासिल की है। क्या तुम्हें मालूम है कि वो रेड नोटबुक लेकर कहाँ गया है? इमरान ने पूछा तो ब्लैक जैक ने फिर इस बात में सर हिला दिया। तुम स्टोर रूम से असलहा और दूसरा सामान निकाल रहे हो, लगता है कि तुम मास्टर जोजो से रेड नोटबुक हासिल करने जा रहे हो, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? इमरान ने कहा तो ब्लैक जैक ने इस बात में सर हिला दिया। गुड, अब तुम एक काम करो, इमरान ने कहा और फिर वो ब्लैक जैक को हिदायत देने लगा, जिसे सुनकर ब्लैक जीरो हैरत भरे अंदाज में इमरान को देखने लगा, जैसे वो कुछ समझ ना पा रहा हो कि इमरान ब्लैक जैक से ये काम क्यों करवा रहा है। सुनो ब्लैक जैक, मेरी इन हिदायत पर अमल करने के बाद तुम मेरी आवाज और मेरी बताई हुई तमाम बातों को भूल जाओगे और बिल्कुल रूटीन के मुताबिक क्लास्टा और मास्टर जोजो के पास जाओगे और अपने अंदाज में काम करोगे, इमरान ने कहा तो ब्लैक जैक ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इमरान ने माइक बंद करके मशीन के हुक से लगाया और फिर मशीन के बटन दबाकर ब्लैक जैक के चेहरे का क्लोजअप खत्म कर दिया। अब वो खामोशी से ब्लैक जैक को देख रहे थे। ब्लैक जैक स्टोर की एक अलमारी से कोई चीज लेकर ऑपरेशन रूम की तरफ गया था और फिर वो सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहाँ शीशे का एक बड़ा सा सुतून दिखाई दे रहा था। ब्लैक जैक शीशे के सुतून में दाखिल हुआ और स्टोर रूम से लाई हुई वो चीज जो बेहद बारीक तार थी को सुतून में चारों तरफ लगे हुए हुकों में झुक कर लगाने लगा, क्योंकि ये हुक ब्लैक जैक के कद से खासे नीचे थे। ये क्रोना वायर थी जो लोहे की तार थी, मगर बाल से ज्यादा बारीक होने की वजह से आसानी से नजर नहीं आती थी। ये तार अमूमन प्रिंट बनाने के लिए फोटोस्टेट मशीनों में इस्तेमाल होती थी। ब्लैक जैक तार को इन हुकों के जरिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाकर सुतून में एक जाल सा बनाता जा रहा था। जब सारी क्रोना वायर उसने सुतून पर फैला दी तो वो शीशे के सुतून से बाहर आ गया। उसने शीशे के सुतून का दरवाजा बंद किया और फिर दोबारा चलता हुआ स्टोर रूम में आ गया। जैसे ही वो स्टोर रूम में आया, इमरान ने मशीन का एक बटन प्रेस कर दिया। उसी लम्हे ब्लैक जैक को एक झटका सा लगा और फिर वो चौंक कर हैरानी से इधर उधर देखने लगा, जैसे वो हैरान हो रहा हो कि उसके साथ क्या हुआ था। जब उसकी समझ में कुछ न आया तो उसने कंधे उचकाए और अपने काम में मसरूफ हो गया। इमरान ने इत्मीनान भरे अंदाज में मशीन का बटन प्रेस करके मशीन ऑफ कर दी। ये आपने सुतून में कोरोना वायर लगाने के लिए ब्लैक जैक को ट्रांस में लिया था, मगर ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। बाद में बताऊंगा, पहले कॉफी पिलाओ, इमरान ने कहा। ब्लैक जीरो चल रहा है गौर से इमरान की तरफ देखता रहा और फिर वो उठकर किचन की तरफ चला गया। थोड़ी देर में वो कॉफी के दो मग ले आया था। उसने एक मग इमरान को दिया और दूसरा मग लेकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। स्क्रीन पर ब्लैक जैक बदस्तूर दिखाई दे रहा था। इमरान और ब्लैक जीरो गौर से देख रहे थे। अब ब्लैक जैक के साथ क्लास्टा भी नजर आ रही थी। वो दोनों बातें कर रहे थे। ब्लैक जैक के चेहरे पर ऐसा कोई तासुर नहीं था जिससे उसे शक होता कि वो अभी चंद लम्हे कबल इमरान के ट्रांस में रह चुका है। थोड़ी देर में वो दोनों अपने बेशुमार मुसल्ला साथियों के साथ हेडक्वार्टर से निकलते दिखाई दिए। शायद वो मास्टर जोजो की तरफ जा रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने ब्लैक जैक और क्लास्टा को एक हवेली नुमा इमारत के पास जाते देखा। फिर तमाम मुसल्ला अफराद ने हवेली नुमा इमारत को चारों तरफ से घेर लिया था। अब आपका क्या प्रोग्राम है? ब्लैक जीरो ने कहा। शादी भी होगी और छुहारे भी बटेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक जीरो बेअख्तियार मुस्कुरा दिया। सफदर तो अस्पताल में है, इसका मतलब है आप इन पर बाकी मेंबरों के साथ रेड करेंगे, ब्लैक जीरो ने कहा। जाहिर है मुझ जैसा नातवा इंसान ब्लैक जैक, क्लास्टा और मास्टर जोजो जैसे मुजरिमों का अकेले मुकाबला किस तरह कर सकता है। इन्हें नुमाया करने के लिए मुझे बाराती तो ले जाने ही होंगे, इमरान ने बेचारगी से कहा तो ब्लैक जीरो हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, मैं मेंबरों को कॉल करता हूँ, ब्लैक जीरो ने इमरान की बात का मतलब समझते हुए कहा। उनसे कहा कि वो अपने साथ बैंड बाजे का पूरा बंदोबस्त करके आए, हो सकता है दुल्हन वाले आसानी से दुल्हन देने पर तैयार न हो, ऐसे में जोर जबरदस्ती भी करना पड़ती है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो मेम्बरान को कॉल करने लगा। ब्लैक जीरो ने जूलिया को कॉल करके तमाम मेम्बरान को पूरी तरह मुसल्ला होकर एक मखसूस जगह पहुंचने की हिदायत दी। जोसेफ चुके दानिश मंजिल में ही था, इसलिए इमरान ने उसे भी अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया था। चुनाचा उसने ब्लैक जीरो को हिदायत दी और फिर वो जोसेफ के साथ दानिश मंजिल से निकल आया था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां X2 ने सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान को पहुंचने की हिदायत दी थी। जूलिया अपने तमाम साथियों के साथ मौजूद थी, वो दो कारों में वहां पहुंचे थे और पूरी तरह से मुसल्ला थे। इमरान ने उन्हें फौरन चलने को कहा तो वो खामोशी से उसके साथ चल पड़े। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए वो इस मज़ाफ़ाती इलाके में पहुंच गए जहां इमरान ने ब्लैक जैक और क्लास्टर को एक हवेली नुमा इमारत में जाते देखा था। वो हवेली नुमा इमारत कॉलोनी के आखिरी सिरे पर थी, इसलिए इमरान कार सीधा उसी तरफ ले गया जहाँ इस हवेली नुमा इमारत के करीब बेशुमार कारें और मुसल्ला अफराद मौजूद थे। इमरान ने हिफ्ज़-ए-अमन तकद्दुम के तौर पर दाएं तरफ नजर आने वाली एक सड़क पर कार मोड़ ली थी क्योंकि इन कारों को इस तरफ आते देखकर वहां मौजूद मुसल्ला अफराद चौंक पड़े थे। जूलिया और उसके पीछे सिद्दीक भी अपनी अपनी कार मोड़कर उसी तरफ ले आए थे। आगे जाकर एक और सड़क मुड़ रही थी, इमरान ने कार उस तरफ मोड़ ली। ये इस हवेली नुमा इमारत का वे हिस्सा था, इस तरफ कोई मौजूद नहीं था। वहाँ खाली प्लॉट्स और साइडों पर दरख्त मौजूद थे जिन्हें देखकर इमरान की आंखों में चमक सी आ गई थी। उसने कार इन दरख्तों के बीच ले जाकर रोक दी। जूलिया और सिद्दीक भी उन दरख्तों में कारें ले आए थे और फिर वो असलहा निकाल कर कारों से निकल आए। क्या ब्लैक जैक और क्लास्टा इस हवेली में है, जूलिया ने इमरान से पूछा। आवाज देकर पूछ लो, इमरान ने कहा तो उसके साथ ही बेख्तियार हंस पड़े। तुम बात सीधी तरह से नहीं कर सकते, जूलिया ने झल्ला कर कहा। सीधी बात करने के लिए मुझे सीधा होना पड़ेगा और सीधा साधा इस दौर में सिर्फ बीवी का गुलाम यानी शोहर ही हो सकता है। अब तुम खुद ही सोच लो, इमरान ने कहा तो जूलिया का रंग यकलख मुतगैर हो गया। इमरान साहब, दूसरी तरफ से बेशुमार मुसल्ला अफराद यहाँ मौजूद हैं। अंदर से भी खटपट की आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दो मुखालिफ ग्रुप आपस में लड़ रहे हों। अंदर शदीद फायरिंग हो रही है, गो की आवाज बेहद धीमी है। शायद इन लोगों ने अपनी गनों पर साइलेंसर फिट कर रखे हैं, लेकिन बहरहाल मैं इन आवाजों को पहचानता हूँ, नौमानी ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। तुम्हारा क्या अंदाजा है, इनकी तादाद कितनी हो सकती है, इमरान ने इसकी तरफ संजीदगी से देखते हुए कहा। इनकी तादाद किसी भी तरह 50 से कम नहीं हो सकती, 10 मुसल्ला अफराद तो बाहर मौजूद थे, नौमानी ने कहा। ठीक है, तुम और सिद्दीकी बाहर मुसल्ला अफराद को खत्म करो, मैं जूलिया, जोसेफ, तनवीर, खावर और चौहान इस तरफ से इमारत में दाखिल होंगे, जो नजर आए उसका खात्मा कर दो, इमरान ने कहा तो नौमानी ने इस बात में सर हिलाया और मशीन पिस्टल पर साइलेंसर फिट करने लगा। सिद्दीकी ने भी उसकी तकलीद की और फिर वो तेजी से दूसरी तरफ दौड़ते चले गए। इमरान और उसके बाकी साथियों ने भी अपनी अपनी घनों पर साइलेंसर फिट किए और फिर तेजी से इमारत की तरफ बढ़ते चले गए। इमारत की दीवार तो खासी बुलंद है, हम अंदर कैसे जाएंगे, जूलिया ने कहा। ये दरख्त इसी इमारत के साथ मुलहिक है, इस पर चढ़कर अंदर कूद जाओ, इमरान ने कहा और फिर वो खुद भी तेजी से दरख्त पर चढ़ता चला गया, जिसका तना तो इमारत से बाहर था मगर उसकी शाखा इमारत के अंदर थी। दरख्त पर चढ़कर इमरान ने अंदर झांका तो इस तरफ बाढ़ थी। इमरान ने शाखों को पकड़ा और अपने साथियों को इशारा करते हुए अंदर कूद गया। उसके साथी भी एक एक करके अंदर कूद गए। बाढ़ खासी बड़ी और घनी थी, वो सब इसकी ओट में हो गए थे क्योंकि उन्हें इमारत की दूसरी तरफ से बेशुमार अफराद के दौड़ने भागने की आवाजें सुनाई दे रही थी। इमरान ने उन्हें इशारा किया तो वो झुके झुके अंदाज में अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ने लगे। वो फैल कर दरख्तों और बाढ़ की आड़ लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी लम्हे अचानक इमरान को एक दरख्त पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इमरान बिजली की तेजी से पलटा, उसकी मशीन पिस्टल से शोले निकले और दरख्त पर से एक शख्स बुरी तरह चीखता हुआ नीचे की आ गिरा। इमरान ने उस पर मजीद फायरिंग की तो वो तड़पता हुआ शख्स यकलख्त साकित हो गया। उसी लम्हे इमारत के साइडों से बेशुमार अफराद निकल कर उस तरफ आ गए। इन मुसल्लह अफराद को देखकर इमरान और उसके साथियों ने तेजी से दरख्तों की ओट लेकर खुद को छुपा लिया, मगर इन मुसल्लह अफराद ने शायद उन्हें देख लिया था। इनके हाथों में मशीन गने थी, उन्होंने इस तरफ आते ही अचानक मशीन गनों के मुंह खोल दिए थे। तड़तड़ाहट की हल्की मगर मुसलसल आवाजों के साथ उनके इर्द गिर्द गोलियों की बौछार होने लगी थी और दरख्तों के तनों के टुकड़े और शाखें टूट टूट कर गिरने लगी। उन्होंने भी शायद माहौल में इंतशार बर्पा न करने के लिए मशीन गनों पर साइलेंसर फिट कर रखे थे। इमरान और उसके साथियों ने मौका मिलते ही इन मुसल्ला अफराद पर फायरिंग शुरू कर दी और फजा इन अफराद की तेज और खौफनाक चीखों से गूंज उठी। इन हमलावरों को हलाक करके वो तेजी से सामने की तरफ भाग पड़े और फिर इमारत की दूसरी तरफ आते ही उनका सामना बेशुमार मुसल्ला अफराद से हो गया और फिर इनमें और हमलावरों में जैसे जबरदस्त ठन गई हो। सनसनाती हुई गोलियां उनके इर्द गिर्द से गुजरती रही थी और वो दुश्मनों पर जवाबी फायरिंग कर रहे थे। तुम इन लोगों को संभालो, मैं अंदर जाता हूँ, इमरान ने चीखते हुए कहा और फिर वो भागता हुआ एक बरामदे में गया। बरामदे के सुतूनों की आड़ लेता हुआ वो आगे बढ़ा। सामने उसे एक मुसल्ला शख्स नजर आया तो इमरान ने उसे वहीं ढेर कर दिया। करीब ही एक दरवाजा था जो थोड़ा सा खुला हुआ था। इमरान बिजली की सी तेजी से उस दरवाजे की तरफ झपटा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही वो तेजी से दाएं दीवार की साइड से चिमट गया था। ये एक कमरा था जो बिल्कुल खाली था। कमरे की दूसरी दीवार के पास एक और कमरे का दरवाजा था। इमरान ने अकबर दरवाजा बंद किया और दूसरे दरवाजे के करीब आ गया। उसने दरवाजे से कान लगाकर दूसरी तरफ सुनगुन ली, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी। इमरान ने हैंडल पकड़ कर दरवाजे को खोल कर झांका, वो भी एक कमरा था और खाली था। इमरान उस कमरे में आ गया। इसी तरह इमरान मुख्तलिफ कमरों में घूमता रहा, मगर उसे वहां कोई दिखाई न दिया। यूं लगता था जैसे इस इमारत के मकीन बाहर एक दूसरे से बरसरे पैकार हों। इमरान एक छोटे से कमरे में दाखिल हुआ तो वो इस कमरे की साख देखकर चौंक पड़ा। ओह, इसका मतलब है वो सब नीचे तहखानों में है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उस कमरे की साख बता रही थी जैसे इस कमरे से तहखाने की तरफ जाने का रास्ता हो। इमरान ऐसी इमारतों के तर्ज तामीर से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए वो समझ गया था कि इस इमारत के नीचे यकीनन बड़े बड़े तहखाने हैं जहां जाने का रास्ता इस कमरे में हो सकता है। कमरा बिल्कुल खाली था, उसकी दीवारें सपाट थी, कमरे में हल्के पावर का बल्ब जल रहा था। इमरान ने गौर से उस कमरे की दीवारों को देखना शुरू किया और फिर उसने दीवारों पर हाथ फेरने शुरू कर दिए। तब अचानक एक दीवार पर से उसे एक छोटी सी कील का पता चला। कील चूंकि बेहद छोटी थी और दीवार की रंग की थी, इसलिए उसे आसानी से देखा ना जा सकता था, मगर इमरान ने उसे अपनी सलाहियतों से तलाश कर लिया था। उसने कील को अंगूठे से दबाया तो कील आसानी से अंदर की तरफ दबती चली गई। जैसे ही कील अंदर दबी, अचानक कमरे के एक कोने का फर्श हटता चला गया। वहां नीचे सीढ़ियां जा रही थी। सीढ़ियां देखते ही इमरान की आंखें चमक उठी थी। उसने झुक कर नीचे देखा, सीढ़ियां खाली थी। इमरान मशीन पिस्टल हाथ में लिए तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। सामने एक राहदारी थी, ये राहदारी भी खाली थी। इमरान राहदारी में आकर राहदारी की दीवार के साथ लगकर एहतियात के साथ आगे बढ़ने लगा। इस राहदारी के सिरे पर एक कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। इस कमरे में एक मर्द और एक लड़की की बातें करने की आवाजें आ रही थी। इमरान ने दोनों आवाजों को पहचान लिया था, ये आवाजें ब्लैक जैक और क्लास्टा की थी। इमरान तेजी से कमरे के दरवाजे के करीब आ गया। ऐसा वक्त आएगा तो देखा जाएगा, फिलहाल ये रेड नोटबुक मुझे दो, ब्लैक जैक की आवाज सुनाई दी और रेड नोटबुक का सुनकर इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। वो मशीन पिस्टल लेकर अचानक दरवाजे के सामने आ गया। सामने ब्लैक जैक और क्लास्टा खड़े थे। क्लास्टा रेड नोटबुक ब्लैक जैक की तरफ बढ़ा रही थी और फिर जैसे ही ब्लैक जैक ने क्लास्टा से रेड नोटबुक लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी लम्हे इमरान ने फायर कर दिया। गोली नोटबुक पर पड़ी और नोटबुक क्लास्टा के हाथ से निकल कर दूर जा गिरी। फायर की आवाज सुनकर ब्लैक जैक और क्लास्टा तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़े और फिर इमरान पर नजर पड़ते ही उनकी आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती चली गईं। हेलो ब्लैक जैक, हेलो क्लास्टा, इमरान ने इन दोनों की तरफ देखकर मासूम से लहजे में कहा। उसी लम्हे अचानक क्लास्टा तेजी से हरकत में आई। उससे पहले कि इमरान और ब्लैक जैक कुछ समझते, अचानक क्लास्टा ने झपट कर ब्लैक जैक के हाथ से रिमोट कंट्रोल छीन लिया और उसने रिमोट कंट्रोल को पूरी कुव्वत से एक दीवार पर खींच मारा। दीवार से टकराते ही रिमोट कंट्रोल के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो जमीन पर बिखरता चला गया। ओह, ये तुमने क्या किया है, ब्लैक जैक ने गुर्राते हुए कहा। वही जो मुझे करना चाहिए था, क्लास्टा ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। रिमोट कंट्रोल को तोड़कर उसके चेहरे पर इत्मीनान सा फैल गया था। क्या तुम समझती हो मेरे पास यही एक रिमोट कंट्रोल था? ब्लैक जैक ने कहा। दूसरे रिमोट कंट्रोल तक पहुंचने का मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगी, प्लास्टर ने घुर्रा कर कहा, और फिर अचानक उसकी लात चली और ब्लैक जैक उछल कर दूर जा गिरा। उसके हलक से बेख्तियार चीख निकल गई थी। इससे पहले कि वो उठता, प्लास्टर ने एक लंबी छलांग लगाई और उड़ती हुई ब्लैक जैक के करीब आ गई। उसने ब्लैक जैक के पहलू में लात मारी तो ब्लैक जैक का जिस्म उछला और रोल होता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। प्लास्टर ने एक बार फिर उसे टांग मारनी चाही, लेकिन उसी लम्हे ब्लैक जैक ने अपने जिस्म को समेट लिया। साथ ही उसने अपने जिस्म को घुमाया और उसकी टांगे प्लास्टर की टांगों से टकरा गईं। प्लास्टर को एक झटका लगा और वो उछल कर फर्श पर आ गिरी, मगर उसने उठने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाई थी। ब्लैक जैक भी उसे गिरा कर तेजी से उठकर खड़ा हो गया था और वो दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबले खड़े होकर एक दूसरे को गजबनाक निगाहों से घूरने लगे। उनका अंदाज ऐसा था जैसे वो इमरान की मौजूदगी को कतई तौर पर फरामोश कर बैठे हों और इमरान इन दोनों की जानिब हवन्नकों की तरह आंखें फाड़े देख रहा था। तुम दोनों सचमुच लड़ रहे हो या मुझे अहमक बनाने की कोशिश कर रहे हो? इमरान ने उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहा। बको मत, चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहो इमरान, तुमसे मैं बाद में निपटूंगी, पहले मुझे ब्लैक जैक से निपटने दो। ये मक्कार और धोखेबाज इंसान है, इसने मुझे धोखा दिया है और क्लास्टर धोखा देने वाले इंसान को कभी माफ नहीं करती, क्लास्टर ने गुर्राते हुए कहा। अरे बाप रे, तुम दोनों तो बेहद गुस्से में मालूम हो रहे हो। अगर तुम दोनों का फ्री स्टाइल लड़ने का इरादा है तो क्या मैं तुम दोनों को लड़ते हुए देखने के लिए सोफे पर बैठ जाऊं? इमरान ने क्लास्टर की तरफ देखते हुए कहा। बैठ जाओ, क्लास्टर ने कहा तो इमरान कदम बढ़ाता हुआ सोफे के करीब आ गया और इस पर बड़े इत्मीनान से बैठकर ब्लैक जैक और क्लास्टर की तरफ देखने लगा। इमरान ने सोफे पर बैठने से पहले बड़ी सफाई से रेड नोटबुक को उठाकर अपनी जेब में मुंतकिल कर लिया था। क्लास्टर, मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाकर हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। ऐसा करके तुमने मेरे गजब को ललकारा है और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ब्लैक जैक ने गुर्राते हुए कहा। साथ ही उसने क्लास्टर पर छलांग लगा दी, लेकिन क्लास्टर ब्लैक जैक से कहीं ज्यादा फुर्तीली थी। वो तेजी से एक तरफ हट गई और ब्लैक जैक अपने ही जोर में उसके करीब से निकलता चला गया। इससे पहले कि वो अपनी झोंक में नीचे गिरता, क्लास्टर ने बिजली किसी तेजी से अपने जिस्म को घुमाया और फिर उसकी किक पूरी कुव्वत से ब्लैक जैक की कमर पर पड़ी। ब्लैक जैक उछल कर एक धमाके से नीचे जा गिरा। उसने जल्दी से दोनों हाथ आगे करके अपना चेहरा जख्मी होने से बचा लिया था। जमीन पर गिरते ही वो जख्मी सांप की तरह पलटा और फिर तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे क्लास्टर ने उल्टी छलांग लगाई और कलाबाजी खाकर उसने ब्लैक जैक के सीने पर दोनों टांगे मारनी चाही, मगर ब्लैक जैक ने उछल कर उसकी कमर पर लात मारी तो क्लास्टर फजा में पलटा खाकर नीचे जा गिरी। वेल डन ब्लैक जैक, बड़ा जबरदस्त बचाव किया है तुमने, इमरान ने ब्लैक जैक की तारीफ करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर ब्लैक जैक उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ ही था कि अचानक क्लास्टर जख्मी शेरनी की तरह चीखती हुई उठी और ब्लैक जैक पर झपट पड़ी। दूसरे ही लम्हे ब्लैक जैक बुरी तरह से चीखता हुआ क्लास्टर के ऊपर से होता हुआ पीछे दीवार से जा टकराया। दीवार से टकराते ही वो किसी रबर की गेंद की तरह वापस पलटा। उसने फजा में कलाबाजी खाकर किक क्लास्टर के सीने पर मारी तो क्लास्टर भी चीखती हुई ढेर हो गई। ब्लैक जैक कलाबाजी खाकर सीधा हुआ और फिर उसने जमीन से उठती हुई क्लास्टर पर छलांग लगा दी, मगर उसी लम्हे क्लास्टर बिजली किसी तेजी से पलटी, उसकी टांग ब्लैक जैक के पहलू पर पड़ी और ब्लैक जैक घूमता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। वेल डन क्लास्टर, जबरदस्त दाव मारा है तुमने, इमरान ने अब क्लास्टर की तारीफ करते हुए कहा। उसी लम्हे क्लास्टर उठी और तेजी से ब्लैक जैक के करीब आ गई। उसने ब्लैक जैक के सर पर टांग मारनी चाही, लेकिन ब्लैक जैक ने खुद को संभालते हुए अपने जिस्म को नीचे गिराया और उसने क्लास्टर की फजा में उठी हुई टांग को पकड़ कर नीचे धकेल दिया। क्लास्टर पुश्त के बल जैसे ही नीचे गिरी, ब्लैक जैक ने अपने जिस्म को लट्टू की तरह घुमाया और इसकी दोनों टांगे क्लास्टर की कमर पर इस अंदाज में पड़ी कि क्लास्टर चिकने फर्श पर तकरीबन घसीटती हुई पीछे दीवार से जा टकराई। इसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई थी। जैसे ही क्लास्टर गिरी, उसी लम्हे ब्लैक जैक ने जेब से चपटी नाल वाला पिस्टल निकाल लिया। इससे पहले कि वो क्लास्टर पर ब्लास्टिंग रेस फायर करता, अचानक इमरान ने उठकर उसके पिस्टल वाले हाथ पर लात मार दी थी। ब्लैक जैक के हाथ से पिस्टल निकल कर दूर जा गिरा। ये फाउल है प्यारे, दस्त बदस्त जंग में असलहा इस्तेमाल करना ममनू है, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं, इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा। इसे छोड़ दो इमरान, ये मेरा शिकार है, क्लास्टर ने कहा, जो इस दौरान उठकर खड़ी हो चुकी थी। वो ब्लैक जैक की तरफ बढ़ती चली गई, जो इसे अपनी तरफ आते देख कर तेजी से उठकर खड़ा हो गया था और फिर अचानक इन दोनों ने एक साथ हरकत की और निहायत खौफनाक अंदाज में एक दूसरे से टकरा गए। क्लास्टर ने पूरी कुव्वत से ब्लैक जैक की नाक पर टक्कर मारी थी, जबकि ब्लैक जैक का जोरदार मुक्का क्लास्टर के कंधे पर पड़ा था। दोनों को जोरदार झटका लगा और वो लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गए थे, मगर फिर दोनों एक दूसरे पर पिल पड़े। अचानक क्लास्टर घुटनों के बल उसके सीने पर आ गिरी। ब्लैक जैक ने तेजी से अपनी जगह बदलनी चाही, मगर उसे देर हो चुकी थी। क्लास्टर घुटनों के बल उसके सीने पर गिरी थी और ब्लैक जैक के हलक से इस कदर दर्दनाक चीख निकली जिससे पूरा कमरा गूंज उठा था। उसने अपने जिस्म को जोरदार झटका दिया तो क्लास्टर उछलकर दूसरी तरफ जा गिरी, मगर गिरते गिरते भी उसकी टांग चल गई थी और ब्लैक जैक को अपने सर में जोरदार धमाका होता महसूस हुआ था। क्लास्टर बिजली की सी तेजी से उठी और फिर उसकी टांगे मशीनी अंदाज में ब्लैक जैक के सर पर पड़ने लगी। ब्लैक जैक बुरी तरह से चीखता और तड़पता रहा। उसने क्लास्टर की टांगों से बचने की कोशिश की बेहद, मगर कामयाब न हो सकी। वो चंद लम्हे चीखता और तड़पता रहा और फिर उसकी चीखें दम तोड़ गईं। शायद वो बेहोश हो चुका था। क्लास्टर का मुकाबला करने चला था। क्लास्टर ने ब्लैक जैक की तरफ देखकर उस पर नफरत से थूकते हुए कहा, अरे बाप बाप रे, तुम तो इंतहाई माहिर लड़ाका हो क्लास्टर। ब्लैक जैक जैसे फाइटर को तुम इस कदर आसानी से पछाड़ सकती हो तो फिर मेरा क्या होगा? मैं तो तुमसे शादी करने का सोच रहा था। शादी के बाद अगर मैंने तुम्हारी कोई बात ना मानी तो क्या तुम मेरा भी ब्लैक जैक जैसा ही हशर करोगी? इमरान ने खौफ भरे लहजे में कहा तो क्लास्टर के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारा मैं इससे भी बुरा हाल करूंगी, क्लास्टर ने जहरीले लहजे में कहा। क्यों क्यों, मैंने क्या किया है? इमरान ने और ज्यादा बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुम मेरे उन दुश्मनों में से हो जिन्हें मैं एक लम्हे के लिए भी जिंदा नहीं देख सकती, क्लास्टर गुर्राई। तो आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें दिखाई ही नहीं दूंगा, इमरान ने फौरन कहा। बको मत, रेड नोटबुक मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हारा इंतहाई भयानक हशर करूंगी, क्लास्टर ने कहा। रेड नोटबुक? ये कौन सी होती है रेड नोटबुक? इमरान ने कहा। मैंने उस रेड नोटबुक को तुम्हें उठाते हुए खुद देखा है, वो तुम्हारी जेब में है। जल्दी करो, नोटबुक मुझे दे दो वरना, क्लास्टर ने गुज़बनाक लहजे में कहा। वरना क्या? इमरान ने हंसकर जैसे उसे शेर देते हुए कहा। वरना तुम्हारा अंजाम बेहद बुरा होगा, क्लास्टर ने कहा। उसने आगे बढ़कर अचानक इमरान के मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन इमरान तेजी से दाईं तरफ हट गया। क्लास्टर ने गुर्रा कर दूसरा हाथ का मुक्का इमरान की गर्दन पर मारना चाहा, मगर इमरान तेजी से दूसरी तरफ घूम गया और साथ ही उसने क्लास्टर के पेट में जोरदार पंच मारा तो क्लास्टर डकराती हुई कई कदम पीछे हट गई, मगर फिर एकदम सीधी होकर इमरान को खूंखार नजरों से घूरने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, गलती से तुम्हें मेरा पंच लग गया है, प्लीज प्लीज मुझे ऐसी खौफनाक नजरों से ना घूरो, इमरान ने बौखला कर कहा। क्लास्टर के हलक से जख्मी शेरनी जैसी गुर्राहट निकली। वह अचानक फजा में उछली और उसने इमरान के सीने पर किक मारने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे इमरान की टांग चली और क्लास्टर के पहलू पर पड़ी। क्लास्टर फजा में रोल होते हुए दूर जा गिरी, मगर उसने उठने में एक लम्हे की भी देर न लगाई थी। अब उसका चेहरा गैज़ो गज़ब से सुर्ख हो गया था। वो आंधी और तूफान की तरह इमरान पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। उसने छलांग लगाई और उसके दोनों हाथ जमीन से लगे और उसने कलाबाजी खाते हुए अपनी दोनों टांगे जोड़कर इमरान के सीने पर मारनी चाही, मगर उसी लम्हे इमरान बिजली की सी तेजी से हरकत में आया। उसने क्लास्टर की दोनों टांगों को पकड़कर जोरदार झटका दिया तो क्लास्टर का ऊपर वाला जिस्म यकलक फजा में उठ गया। क्लास्टर ने टांगे झटक कर खुद को इमरान की गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, मगर इमरान ने उसके जिस्म को तेजी से गर्दिश देते हुए छोड़ दिया। क्लास्टर फजा में घूमती हुई एक दीवार से जा टकराई। इस बार उसके हलक से निकलने वाली चीख बेहद तेज थी। इससे पहले कि वो उठती, इमरान ने लंबी छलांग लगाई और उसके करीब पहुंच गया। इमरान ने क्लास्टर के पहलू में टांग रसीद की तो वो बुरी तरह से बिलबिला उठी और चीखती हुई पलट कर दीवार के करीब जा गिरी और इस बुरी तरह से तड़पने लगी जैसे इमरान की जबरदस्त ठोकर ने उसकी कई पसलियों को तोड़ दिया हो। चंद लम्हे वो इसी तरह तड़पती रही और फिर साकित हो गई। अरे, ये इतनी जल्दी ची बोल गई, मैं तो समझ रहा था कि ये कई रोज तक मुझसे लड़ती रहेगी, इमरान ने उसे साकित होते देखकर हैरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे दरवाजा खुला और जूलिया अपने साथियों के साथ तेजी से अंदर दाखिल हुई, मगर अंदर की सिचुएशन देखकर वो यकलक ठिठक गई। लो, अब आए हो तुम सब, यहाँ तो तमाशा भी खत्म हो गया है, इमरान ने कहा। तमाशा? कैसा तमाशा? जूलिया ने चौंक कर कहा। मैं कमरे में आया तो मादाम क्लास्टर और ब्लैक जैक आपस में पिंग पोंग खेल रहे थे, उन्होंने मुझे रेफरी के फराइज सौंप दिए, चुनाचा मैं यहाँ बैठा रेफरी के फराइज सर अंजाम दे रहा था और फिर दोनों पिंग पोंग खेलते हुए थक गए तो आराम करने के लिए यहीं लेट गए हैं। अब देखो कब ये जागेंगे और कब अपना अधूरा खेल शुरू करेंगे, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। सच सच बताओ क्या हुआ था यहाँ, और ये लाश के टुकड़े किसके हैं, और ये दोनों बेहोश कैसे हो गए, क्या तुम्हारी इनसे लड़ाई हुई थी, जूलिया ने कहा। लड़ाई? अरे तौबा तौबा क्या बात करती हो, मैं तुम्हें लड़ाई भिड़ाई वाला इंसान नजर आता हूँ, इमरान ने इस अंदाज में कहा कि सब बेख्तियार हंस पड़े थे। इमरान क्या तुम बताओगे नहीं, जूलिया ने नाराज होते हुए कहा तो सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के चेहरों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। ऐसे नाराज मत हुआ करो वरना यहाँ एक इंसानी दिल के जलने की महक फैल जाएगी, इमरान ने कहा तो जूलिया समेत सब हंस पड़े। इमरान ने संजीदा होकर ब्लैक जैक और क्लास्टा की लड़ाई भिड़ाई के बारे में उन्हें बताना शुरू कर दिया। अभी उन्हें वो तफसील बता ही रहा था कि अचानक उन्होंने ब्लैक जैक को उछल कर खड़े होते देखा। उसका चेहरा वहशत से बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें सुर्ख थीं। जमीन से उठते हुए उसने जेब से एक माचिस की डिबिया नुमा बम निकालकर हाथ में ले लिया था जिस पर एक सुर्ख बल्ब सा स्पार्क कर रहा था। अरे ब्लैक जैक तुम्हें इतनी जल्दी होश आ गया, लगता है क्लास्टा की नरमो नाजिक जूतियां सही तौर पर तुम्हारे सर पर नहीं बजी, इमरान ने कहा। इमरान उसके हाथ में D-100 बम है जिसका उसने बटन दबा रखा है, अगर इसकी उंगली बटन से हट गई तो बम धमाके से फट जाएगा और इसके साथ ही यहाँ हम सब के भी परखचे उड़ जाएंगे, जूलिया ने ब्लैक जैक के हाथ में मौजूद खतरनाक बम की तरफ देखते हुए सरसराते लहजे में कहा। उसके साथ ही D-100 बम की ताकत को जानते थे उसके साथी भी D-100 बम की ताकत को जानते थे इसलिए जूलिया की बात सुनकर वो भी अपनी जगह साकित हो गए थे, इसलिए उन्होंने ब्लैक जैक पर फायरिंग करने की हिमाकत ना की थी। इमरान रेड नोटबुक मेरे हवाले कर दो वरना मैं तो मरूंगा ही, मगर तुम सब भी बच नहीं सकोगे, ब्लैक जैक ने गुर्राते हुए कहा। अरे बाप रे मैं मरने का कोई इरादा नहीं करता, ब्लैक जैक भाई अपनी और जूलिया की जान पर ऐसी सैकड़ों रेड बुक्स मैं कुर्बान कर सकता हूँ, इमरान ने बौखला कर कहा और जेब में हाथ डालकर उसने जल्दी से रेड नोटबुक निकाल ली जो उसने ब्लैक जैक और क्लास्टा की लड़ाई के दौरान जमीन से उठाकर जेब में डाल ली थी। नहीं इमरान, अगर इस रेड नोटबुक में डॉक्टर साकिब का तहरीर करदा फार्मूला है तो इसे ब्लैक जैक के हवाले मत करना, जूलिया ने चीख कर कहा। नहीं तुम सबकी जानें ज्यादा कीमती हैं, मैं एक नोटबुक के लिए तुम सबकी कुर्बानी नहीं दे सकता, इमरान ने यकलक संजीदा होते हुए कहा। और इससे पहले कि जूलिया और उसके साथ ही कुछ कहते इमरान ने रेड नोटबुक ब्लैक जैक की जानेब उछाल दी जिसे ब्लैक जैक ने दूसरे हाथ से फजा में ही दबोच लिया। ये तुमने क्या किया, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। गुड, रेड नोटबुक मेरे हवाले करके भी तुम मेरे हाथों जिंदा नहीं बच सकोगे इमरान, ब्लैक जैक ने कहकहा लगाकर कहा और हाथ में पकड़ा हुआ बम यकलख्त उनकी तरफ उछाल दिया। जैसे ही बम फजा में उछला इमरान ने एक ऊंची छलांग लगाई और इस बम को बिजली की तेजी से फजा में ही दबोच कर नीचे आ गया। उसी लम्हे अचानक कमरा तेज रोशनी से भर गया। ब्लैक जैक फरार हो रहा है, पकड़ो इसे, इमरान ने हलक के बल चीखते हुए कहा। तनवीर और जूलिया ब्लैक जैक पर झपटे जिसके गिर्द तेज रोशनी फैली हुई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे रोशनी खत्म होते ही ब्लैक जैक वहां से गायब हो चुका था। ये क्या, ये ब्लैक जैक रोशनी में कैसे गायब हो गया, क्या वो कोई जादूगर था, जूलिया ने हैरान होते हुए कहा। उसके दूसरे साथी भी ब्लैक जैक के इस तरह गायब होने पर हैरान हो रहे थे। इमरान ने उन्हें ब्लैक जैक की साइंसी इजाद के बारे में बताया जिससे वो अपने जिस्म को रोशनी में जम करके गायब हो जाता था, तो वो और ज्यादा हैरान हुए। वो रेड नोटबुक भी ले गया है, ये बुरा हुआ, बहुत बुरा, जूलिया ने तासुब भरे लहजे में कहा। ब्लैक जैक जहाँ भी होगा उसकी साथी बहरहाल यही मौजूद है, ये हमें बताएगी कि ब्लैक जैक कहाँ है, जूलिया ने कहा तो उन सब ने इस बात में सर हिला दिए। जूलिया ने आगे बढ़कर क्लास्टा को चेक किया मगर उसकी सांसें नहीं चल रही थी और ना ही उसकी दिल की धड़कन, उसकी नाक और मुंह से खून की लकीरें बह रही थीं, वो हलाक हो चुकी थी। ये तो हलाक हो चुकी है, जूलिया ने सरसराते लहजे में कहा। चलो छुट्टी हुई, इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा। उसके चेहरे पर तरद्दुद और परेशानी की मामूली सी भी रमक नजर नहीं आ रही थी, जैसे ब्लैक जैक के रेड नोटबुक लेकर निकल जाने का उसे कोई अफसोस या परेशानी नहीं हुई हो। ओह अब हम ब्लैक जैक तक कैसे पहुंचेंगे, वो रेड नोटबुक लेकर निकल गया तो, जूलिया ने घबराए हुए अंदाज में कहा। ये सब इमरान की गलती है, इसे इतनी आसानी से रेड नोटबुक ब्लैक जैक को नहीं देनी चाहिए थी, तनवीर ने गुस्से लहजे में कहा। तो किस आसानी से रेड नोटबुक उसे देनी चाहिए थी ये भी बता दो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ब्लैक जैक के पास D-100 बम था तनवीर, अगर इमरान साहब फजा में छलांग लगाकर इसे ना दबोच लेते तो यहाँ हम सबके टुकड़े बिखर जाते और ब्लैक जैक को इमरान साहब ने रेड नोटबुक यूं ही नहीं दे दी होगी, नोमानी ने कहा। तो जूलिया और तनवीर के साथ साथ इमरान भी चौंक कर नोमानी की तरफ देखने लगे। क्या मतलब? इमरान ने हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा। आपके चेहरे पर गहरा सुकून है इमरान साहब, जो इस बात का सबूत है कि या तो आपने ब्लैक जैक को जो रेड नोटबुक दी है वो नकली है, या फिर ब्लैक जैक गायब होकर जहाँ गया है वहाँ का आपको इल्म है। अगर ऐसा है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपने वहाँ ब्लैक जैक के लिए कोई खातिर ख्वाह बंदोबस्त कर रखा है ताकि ब्लैक जैक रेड नोटबुक लेकर वहाँ से निकलना चाहे, नोमानी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ये सब कैसे कह सकते हो? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक तो इमरान साहब के चेहरे पर गहरा सुकून है, जैसे उन्हें ब्लैक जैक के इस तरह रेड नोटबुक ले जाने का कोई अफसोस या परेशानी न हो। दूसरे ये कि D-100 बम तो क्या, अगर ब्लैक जैक के पास एटम बम भी होता तो इमरान साहब उसे इस आसानी से रेड नोटबुक उसके हवाले ना करते। इमरान साहब ने जरूर रेड नोटबुक उसे जानबूझकर दी होगी और इसे यहाँ से निकलने का मौका भी दिया है, और ये ऐसे ही मुमकिन है जब इमरान साहब ने उसके लिए कोई जाल बिछा रखा हो जिससे निकलने के लिए ब्लैक जैक के पास 1% भी चांस ना हो, इमरान ने कहा। तो वो सब चौंक कर इमरान की जानिब देखने लगे। बाप रे, यहाँ तो बड़े बड़े आलिम फाजिल बल्कि कशफुल अकल लोग मौजूद हैं जो चेहरा देखते ही दिल की बात भाप लेते हैं, इमरान ने बौखलाकर कहा। तो उन सब के चेहरों पर मुस्कुराहटें आ गईं। इसका मतलब है नोमानी का तजिया बिल्कुल दुरुस्त है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। दिल की बातें जानने वाले को मैं गलत कैसे कह सकता हूँ? अगर मैंने इसे गलत कहा तो मेरे दिल में तुम्हारे और तनवीर के लिए जो ख्यालात हैं वो भी नोमानी तुम्हें बता देगा, और फिर तुम तो शायद मुझे कुछ ना कहो मगर तनवीर मुझ पर अपने पिस्तल की सारी गोलियां खत्म कर देगा, इमरान ने कहा। तो सिवाय तनवीर के बाकी सब खिलखिलाकर हंस पड़े। लेकिन तुमने क्या किया है? ब्लैक जैक को ट्रैप करके तुमने कौन सा तरीका इख्तियार किया है और अब वो कहाँ है? जूलिया ने कहा। आलम बाला में, इमरान ने कहा। आलम बाला में? क्या मतलब? जूलिया और उसके साथी इमरान की बात सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़े। ब्लैक जैक यहाँ से लाजमन फरार होने की कोशिश करता और फरार होने के लिए वो अपनी इजाद को इस्तेमाल में लाता। वो गायब होकर सीधा अपने हेडक्वार्टर में मौजूद एक स्पेशल शीशे के सुतून में नमूदार होता था। मैंने ब्लैक जैक के जिस्म में एक पिन लगा रखी थी जिससे मैंने उसके जहन को कंट्रोल करके उसके ही जरिए शीशे के सुतून में कोरोना वायर का जाल सा लगा दिया था। शीशे के सुतून में ब्लैक जैक रोशनी की शक्ल में जाकर नमूदार होता था और फिर रोशनी सिमट कर उसे मुजस्सम कर देती थी, लेकिन अब जबकि वहां चूंकि कोरोना वायर लगी हुई थी इसलिए जैसे ही रोशनी ने सिमट कर ब्लैक जैक को मुजस्सम किया होगा, ब्लैक जैक का जिस्म कोरोना वायर से कटकर टुकड़ों में तब्दील हो चुका होगा। अब इसके हेडक्वार्टर में मौजूद शीशे के सुतून में उसके टुकड़े ही होंगे, इमरान ने कहा। तो जूलिया और उसके साथियों के चेहरों पर सुकून सा छा गया। फिर इमरान उन सब को लेकर ब्लैक जैक के हेडक्वार्टर पहुंच गया जिसका एड्रेस उसे BTS मशीन से पहले ही मालूम हो चुका था। ब्लैक जैक के हेडक्वार्टर में मुसल्ला अफराद मौजूद थे जिनका मुकाबला करके उन्होंने उन सबको मौत की घाट उतार दिया, और फिर जब वो ब्लैक जैक के मशीन रूम में दाखिल हुए तो उन्हें शीशे का वो सुतून नजर आ गया जिसमें वाकई एक इंसानी लाश के टुकड़े पड़े दिखाई दिए। वहां उन्हें डॉक्टर साकिब के तहरीर करदा फार्मूले वाली रेड नोटबुक भी मिल गई थी। जूलिया और उसके साथी इमरान की जहानत पर हैरान और बेहद खुश थे जिसने आम तारों से ब्लैक जैक जैसे चालाक और खतरनाक साइंसदान को हलाक कर दिया था। पार्ट नंबर 8 यहाँ मुकम्मल होता है। ये नॉवेल यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आपके समाप्त फरमाने का बेहद शुक्रिया।